उनकी अम्मी ने बिना वक्त गंवाए सवाल किया, पहले तुम ये बताओ, क्या तुमने नूर से निकाह कर लिया है? साकेत हैरान रह गया। क्या? नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उनकी मम्मी गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें मना किया था ना नूर से मिलने से, उससे दूर रहने को कहा था। अब साकेत को थोड़ा अंदाजा हो गया कि मामला क्या है, और शायद खलील इसमें शामिल हो सकता है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अम्मी मैंने किसी से कोई निकाह नहीं किया है। नूर मेरे साथ नहीं आई, वो सिर्फ एयरपोर्ट तक मेरे साथ थी। उसके बाद वो अपने रास्ते चली गई और मैं अपनी फ्लाइट पकड़कर दुबई आ गया। उधर वीडियो कॉल पर बैठे रेहान ने जैसे ही ये सुना, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने बिना एक पल गवाए फोन अपने हाथ में ले लिया। साकेत? उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। नूर कहाँ है? साकेत को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रेहान खुद कॉल पर आ जाएगा। उसे लगा था कि कोई और बात करेगा, शायद खलील। वो एक पल के लिए घबरा गया, फिर धीरे से बोला, वो मेरे साथ नहीं आई, मैं तो दुबई आ गया हूँ। लेकिन नूर, सीधे बोलो, रेहान ने बीच में ही काट दिया, वो कतर गई है। साकेत ने निगाहें झुका ली, किसी शेख के यहाँ नौकरानी का काम करने। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन के उस पार सन्नाटा छा गया। क्या? रेहान की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसका फोन आया था मुझे, साकेत ने जल्दी जल्दी कहा, छुपकर कॉल किया था उसने, कह रही थी कि उसे वहां बहुत बुरी तरह रखा जा रहा है, फोन भी छीन लिया गया है, वो वहां से निकलना चाहती है। लेकिन लेकिन, रेहान ने दांत भींचते हुए पूछा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। साकेत की आवाज धीमी पड़ गई। रेहान ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में रख रहा हो। कोई एड्रेस, लोकेशन, कुछ भी? उसने तेजी से पूछा। नहीं, मैंने पूछा ही नहीं, साकेत ने कहा। अगले ही पल रेहान का चेहरा और सख्त हो गया, जैसे ही उसकी कोई भी खबर मिले। वो धीरे लेकिन खतरनाक लहजे में बोला, मुझे तुरंत बताना। कुछ सेकंड रुककर उसने आखिरी बात कही, और साकेत, मेरे साथ धोखा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं छोड़ूंगा नहीं। कॉल कट होते ही सन्नाटा फैल गया, लेकिन रेहान की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, नूर को हर हाल में वापस लाने की जिद। महीने बीत चुके थे, रेहान अब भी नूर को ढूंढ रहा था, लेकिन चुपचाप। कोई शोर नहीं, कोई खुली तलाश नहीं, बस अंदर ही अंदर जलता हुआ जुनून। उधर घर में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। रिदा और अरमान दोनों का रिश्ता आगे तो बढ़ा था। अरमान की तरफ से कोई कोशिश, कोई इमोशन नहीं। और इस सबके बीच सादिया खुश थी। उसे अब यकीन हो गया था कि नूर इसी देश में है, इसी शहर में कहीं, लेकिन रेहान उसे विदेशों में ढूंढ रहा है, यानी नूर कभी वापस नहीं आएगी। और यही बात सादिया को सुकून दे रही थी। लेकिन फरीद खान बहुत परेशान था, पिछले महीने दुबई के चक्कर और अब कतर। उसका गुस्सा आखिर फूट ही पड़ा। वो तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ता हुआ रेहान के कमरे तक पहुंचा। उसी वक्त रेहान तैयार होकर बाहर निकल रहा था। कहाँ जा रहे हो तुम? फरीद खान की आवाज गूंज उठी। कतर? रेहान ने सीधा जवाब दिया। किस लिए? फरीद खान अब पूरी तरह भड़क चुका था। पूरा ऑफिस का काम ऐसे ही पड़ा है, मैं अकेला सब नहीं संभाल सकता, रेहान ने खुद को संभालते हुए कहा। डैड, बिजनेस के लिए ही जा रहा हूँ, कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा। झूठ, फरीद खान ने गुस्से से कहा, हमें विदेशों में कोई बिजनेस नहीं करना, इंडिया में रहकर काम संभालो। वो एक पल रुका, फिर और कड़वा हो गया, वैसे भी तुम ऑफिस में होते कहाँ हो, और जब होते हो तो दिमाग कहीं और होता है। मैं बहुत परेशान हूं रेहान, उसकी आवाज अब टूटने लगी थी। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, रेहान ने धीमे लेकिन ठंडे लहजे में कहा। उसी वक्त सीढ़ियों के पास सादिया खड़ी थी, वो चुपचाप सब सुन रही थी। फरीद खान को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। भाड़ में जाओ तुम, गुस्से में फरीद खान मुड़ा, और तभी धड़ाम, उसका कंधा सीधे सादिया से टकराया। आह, सादिया का संतुलन बिगड़ा और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। एक, दो, तीन, हर सीढ़ी के साथ उसका शरीर टकराता गया। सादिया! रेहान की चीख पूरे घर में गूंज उठी। वो भागता हुआ नीचे पहुंचा। सादिया नीचे फर्श पर पड़ी थी, उसका हाथ पेट पर था और उसकी सांसें तेज हो रही थी, वो प्रेग्नेंट थी। फर्श पर धीरे धीरे खून फैलने लगा। फरीद खान के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने ये क्या कर दिया? उसके होंठ कांप रही थे। रेहान घुटनों के बल बैठ गया। सादिया, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब कुछ खत्म हो चुका था, बच्चा अब नहीं रहा था। सादिया वापस घर आ चुकी थी, वो कमरे में बैठी थी टूटे हुए हाल में, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रेहान उसके पास आकर बैठ गया। खुद को संभालो सादिया, ऐसे कैसे चलेगा? उसने भारी आवाज में कहा। मेरा भी बच्चा था, मैंने भी उसे खोया है। सादिया और ज्यादा रो पड़ी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मेरा सब खत्म हो गया, वो टूटे हुए शब्दों में बोली। उसे लग रहा था कि इस बच्चे की वजह से वो रेहान को अपने पास रोक पाएगी, उसकी प्रॉपर्टी, उसका रिश्ता, सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन अब उसे सब खत्म लग रहा था। तभी दरवाजा जोर से खुला। रेहाना बेगम और फरीद खान कमरे में दाखिल हुए। सादिया अभी भी लो रही थी। डैड की वजह से मेरा बच्चा चला गया, रेहान ने अचानक सख्त आवाज में कहा। रेहाना बेगम हैरान रह गई। तुम क्या कह रहे हो रेहान? रेहान बिना रुके बोला। मैं जहू से कुछ दिनों के लिए कतर जा रहा हूँ,
यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कतर, कितने दिन के लिए? रेहाना बेगम ने पूछा। रेहान ने ठंडी आवाज में कहा, जब तक सादिया ठीक नहीं हो जाती, जब तक वो अपनी तकलीफ भूल नहीं जाती। सादिया उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो समझ गई थी कि रेहान दुख में नहीं बल्कि किसी और ही रास्ते पर जा रहा था। असल में उसे किसी ही परवाह नहीं थी, ना अपनी पत्नी की, ना मरे हुए बच्चे की, ना अपने परिवार की। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, नूर को ढूंढना। उसका जुनून इतना बढ़ चुका था कि वो अपने घर, रिश्तों और जिम्मेदारियों को छोड़ने के लिए तैयार था। रेहान ने वही किया जो उसने तय कर लिया था। वो सादिया को साथ लेकर कतर चला गया। जिस कठोर एटीट्यूड के साथ वो घर से निकला था, उसके बाद फरीद खान में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि उसे फोन करके भी वापस बुला सके या रोक सके। समय बीतता गया। रेहान को गए कई महीने हो चुके थे। उधर नूर की जिंदगी धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगी थी। उसका अगला सेमेस्टर शुरू हो गया था और वो अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त हो गई थी। रेहान की गैर मौजूदगी ने उसकी जिंदगी को कहीं ना कहीं आसान बना दिया था, क्योंकि अब उसे ढूंढने वाला कोई नहीं था। आज भी वही दिन था। नूर अपने सेमेस्टर एग्जाम देकर वापस लौट रही थी। जैसे ही वो कैंपस से बाहर आई, उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ी जो खराब खड़ी थी। ड्राइवर नीचे झुककर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था और पास ही अरमान खड़ा था। थोड़े गुस्से और बेचैनी में ड्राइवर पर चिल्ला रहा था क्योंकि उसे कहीं पहुंचने में देर हो रही थी। नूर ने एक पल के लिए अरमान को देखा, फिर अपनी नजरें हटा ली। अब उसके अंदर अरमान के लिए कुछ भी नहीं बचा था, ना मोहब्बत ना नफरत, बस एक खालीपन, जैसे कोई अनजान इंसान हो। उसे खुद पर ही हल्की सी हंसी आ गई, अपनी पुरानी बेवकूफियों पर। वो बिना रुके अपनी गाड़ी में बैठ गई और अकादमी की ओर चली गई। उधर फरीद खान पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया था। बिजनेस को संभालना, नई जिम्मेदारियां और ऊपर से रेहान के आरोप सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे। वो अब उम्र के उस पड़ाव पर था जहां तनाव सहना आसान नहीं होता। रेहान ने कतर में भी नया सेटअप शुरू किया था, लेकिन वहां भी हालात उसके लिए आसान नहीं थे। एक तरफ काम का दबाव, दूसरी तरफ बेटे की बात कि आप मेरे बच्चे के कातिल हैं, ये सब उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। एक दिन अचानक ऑफिस में काम करते हुए वो लड़खड़ा गया और गिर पड़ा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि फरीद खान को हार्ट अटैक आया है और हालत काफी गंभीर है।
जब रेहान को इस बात का पता चला कि उसके डैड अस्पताल में हैं और उनकी हालत नाजुक है, तो उसे मजबूरी में वापस आना पड़ा। रेहान और सादिया उसी दिन कतर से रवाना हो गए और वापस अपने घर की तरफ लौट आए।